श्रीमान बिहारी लाल की, श्री श्री राधा मान बिहारी लाल की, श्रीमान गढ़ धाम की, श्रीमान इंगित वन की, हिताय गो प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे। आज 19 फरवरी को शनिवार के दिन आप सब लोग बहुत ही भाग्य से और परम कृपा से मानगढ़ में बैठे हुए हैं। मानगढ़ बहुत उत्कट स्थान है और मानगढ़ की कथा करने के पहले कुछ कथा वहाँ की रह गई थी, वो करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे याद दिलाया, धन्यवाद। तो दानगढ़ में एक ब्राह्मण आता है और वो ब्राह्मण रोते रहता है। उसके पास 3 कन्या होती है। आप लोगों को, कितने लोगों को यहाँ पर केवल कन्याएं हैं, सन नहीं है, ओनली गर्ल्स। आपको पता है ना कितना टेंशन होता है। हम भी आपके ही वंश के हैं, हमके भी केवल कन्या ही है। तो कन्याओं को ब्याह करने के लिए बहुत टेंशन आता है। यहाँ पर ऐसा रिवाज है ब्रज में कि जब कन्या का विवाह होता है तो कोई ब्राह्मण हो या जाट हो या क्षत्रिय हो या कोई भी हो, वो सोचते हैं, मतलब ऐसा समाज में सोचते हैं कि जिसकी कन्या का विवाह होता है वो सबसे भिक्षा मांगकर उसका विवाह कर सकता है। यू हैव अ राइट टू गो एंड बेग एवरीबडी फॉर द सेक ऑफ द मैरिज ऑफ योर डॉटर। सो अभी आपका तो शादी हो गई लड़की की, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर गोस्वामी भी कितने धनी होंगे तो भी वो जब लड़की शादी करते हैं सबसे डोनेशन इकट्ठा करते हैं। देयर इज अ कस्टम, मतलब समाज, किसी की शादी लड़की की होती है तो समाज उसकी शादी कर देता है, समाज की जिम्मेदारी होती है। तो वैसे ही ब्राह्मण आके दानगढ़ में रो रहे थे तो कृष्ण भगवान वहाँ आए और बोले, क्यों रो रहे हो आप? तो कह रहे, 3 लड़कियाँ हैं, कैसे विवाह होगा इसका, कुछ करो, कुछ दो मुझे ताकि मैं तीनों का विवाह कर सकूं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे पास। नहीं नहीं, आप राजा के पुत्र हो, आप कुछ करो। तो बहुत सोचते हैं, बाद में बोलते हैं कि मेरे पास एक धन है, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया धन है मेरे पास, अमूल्य धन है एकदम, किसी के पास नहीं है, वो मैं आपको दे देता हूँ। तो उतने में सखियाँ आती है सब वहाँ से, राधारानी भी आती है। राधारानी, यही मेरा धन है, ये मैं आपको अर्पण करता हूँ। तो ब्राह्मण जोर से रोने लगता है, बोले, अभी क्यों रोने लगे? तो 3 थी, वो 4 हो गए अभी। समस्या आपने सुलझाई नहीं है, समस्या बढ़ा दी है। तो फिर कृष्ण भगवान बहुत मजाक करते हैं उसका। बाद में ब्राह्मण बहुत रोता है तो बहुत व्याकुल होकर कृष्ण भगवान के सामने गिर जाता है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं। तो वो राधा रानी को एक तराज में बिठाते हैं। अब सखियों को कहते हैं कि जितने भी अलंकार आप पहन के आए हैं सब डाल दो अलग पलड़े में, और राधा रानी के वजन के बराबर जितने अलंकार होंगे हम इस ब्राह्मण को दान देंगे। फिर राधा रानी का वहाँ पर तुला भार होता है और कितना भी कुछ भी होने के बाद भी वो इक्वल नहीं होता है, गोपियाँ सर्वस्व अर्पण कर देती है, कुछ नहीं होता है। फिर वे तुलसी पत्र रखती है, फिर वह इक्वल हो जाता है। फिर सब जो जितना भी गहना है ब्राह्मण को दान देते हैं, ब्राह्मण बड़ा खुश हो जाता है और 4-1 3 हो जाता है। राधा रानी वापस अपने घर चले जाती है। तो इस तरह से ये दान लीला भी वहाँ पर हुई है, भगवान ने दान दिया है ब्राह्मण को। और राधा रानी, सॉरी, जब जिस मंदिर में हम बैठे थे उसकी कथा तो रह ही गई। जयपुर मंदिर में बैठे थे, कुशल बिहारी मंदिर में। तो ये जयपुर का राजा था, जयपुर के राजा बहुत भक्त हुए हैं, वैष्णव क्षत्रिय हुए हो, राजपूत होते हैं ना वो वैष्णव होते हैं और वो धर्म की रक्षा के लिए राज्य करते हैं। राजपूत बहुत शूर हुआ करते थे और औरंगजेब की हिम्मत नहीं हुई जयपुर पर हमला करने की, क्योंकि सब जयपुर के राजा बहुत शक्तिशाली थे और इसलिए उन्होंने सभी ठाकुरों को, जितने भी विग्रह थे भगवान के वृंदावन के, उनको सबको उन्होंने जयपुर ले गए। वो वहाँ पर अभी भी सेवा कर रहे हैं, उनकी इतनी पीढ़ियाँ गुजर चुकी। और जब गोविंद देव यहाँ से जयपुर गए तो आपको, कभी आप जयपुर जाइए तो आपको बड़ा आनंद आएगा। वहाँ पर आप देखेंगे कितनी भक्ति है राजा की। उस समय जो राजा थे, राजा ने पूरा जो उसका शहर था उसके केंद्र स्थान में जय राधा गोविंद जी को स्थापित किया, और पूरा एक होता ना किला, इट्स लाइक अ फोर्ट, यू नो, बिग फोर्ट, उसको सात दरवाजे सात तरफ से, चार तरफ से, इट्स अ ह्यूज दरवाजे, इसमें बस भी जा सकते हैं अंदर, इतना बड़ा शहर जैसा मंदिर बनाया उसने, इट्स लाइक अ सिटी ओनली, उसके अंदर बहुत दरवाजे हैं, बहुत एंट्रेंसेस हैं, और बगीचे हैं, फव्वारे हैं, और गार्डन्स हैं, और उसके बीच में बहुत भव्य मंदिर है बीच में गोविंद जी का, गोविंद देव के चारों ओर अपना उन्होंने शहर बसाया, अपना राज्य जो था उसके सेंट्रल स्थान पे गोविंद जी को रखा और उसके चारों ओर अपना शहर बसाया, दैट मीन्स ही मेड गोविंदा एज द किंग ऑफ जयपुर, पुणे ने उनको स्थान दिया। और आज भी गोविंद देव के मंदिर में सवेरे के मंगला में 3,000 लोग जाते हैं, अमेजिंग टू सी दैट, यू नो, 3 o'clock सब सारे शहर के जितने भी लोग हैं ना, मोटरसाइकिल गाड़ी स्कूटर से लेके सब मंदिर में आते हैं, और मंगला के अंदर बहुत भीड़ होती है, खड़े रहने की जगह नहीं होती, और हम लोग यात्री जाते हैं तो हम लोग के 4,000 और होते हैं और भीड़ हो जाती है, लेकिन हम कभी अकेले जाते हैं तो भी दिखाई पड़ता है बहुत फुल, संध्या आरती को भी फुल रहता है, 4,000-5,000 लोग रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है, और ऐसे एकदम ऊंची जगह पर ठाकुर जी विराजमान है, बहुत सुंदर राधा गोविंद जी, बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं उनका, बहुत ही सुंदर, वही राधा गोविंद जी की जिनको मैं काम में वन लेके गया था, वृंदा देवी को छोड़कर यहाँ से आगे गए थे, तो मूल विग्रह जो है गोविंद देव के वो जयपुर में है, और जो यहाँ का मंदिर है वो रंगनाथ जी के सामने है वृंदावन में, जो 7 मंजिल का था वो 5 मंजिल तोड़ के 2 मंजिल का रह गया है। तो ऐसे जयपुर के राजा बहुत भक्त थे, तो उसमें से एक राजा थे जो नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने सोचा कि बहुत भव्य श्री जी का मंदिर पुराना हो रहा है और उसका जीर्णोद्धार कैसे करेंगे, इससे अच्छा एक नया मंदिर बनवा देंगे, तो उन्होंने दानगढ़ के पर्वत पर इतना सुंदर मंदिर बनाया, अभी आप देखो कितने 400-500 साल तो हो गए अभी उसको, कैसा मंदिर, कोई मेंटेनेंस नहीं उसका, कोई उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनली जो है आप देखिए उसकी कला को सर देखिए, कितना कोरिव काम किया है, कैसे पत्थर पहाड़ तक पहुंचाया होगा उन्होंने, कैसे पत्थर का स्कल्पचर किया होगा, जो कितना भारी काम किया है भाई, कि देखो अब हाथी देखो, घोड़ा देखो, रथ देखो, सब बना के रखे हैं दीवार पर, तुलसी वृंदावन देखो, खिड़कियां देखो, झरोखा देखो, इतना सुंदर बना के रखा है, इतना 2-3 मंजिल का, इतने कमरे उसके अंदर, बीच में ठाकुर जी का मंदिर और मंडप, मंदिर का रहने की व्यवस्था, इतना सुंदर भव्य मंदिर है, अभी देखो ऊपर देखेंगे गए ना हम लोग अभी, कितने बड़े बड़े छतरी बना के रखे हैं एक लेवल पे, उसके ऊपर और एक, उसके ऊपर और एक, और कहीं भी आप बैठ सकते हैं, चारों ओर छतरियां और खिड़कियां बना के रखी हैं, आप बैठ के भजन कर सकते हैं, 5,000 लोग भी जाएंगे ना तो भी वहाँ बैठने की जगह है, इतनी जगह बना के रखी है, बहुत भव्य एकदम, राजा ने अपने ढंग से बनाया उसको। जब मंदिर पूरा हुआ तो राजा ने सोचा अभी श्री जी का विग्रह जो है भानुगढ़ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ रखेंगे उसको। वो दिन जब आया तो उसके पहले रात को राजा को स्वप्न आया, और श्री जी महारानी स्वप्न में आई और उन्होंने बोला कि ये जो भानुगढ़ है ये मेरा निज घर है, मेरा ओरिजिनल और चिरंतन घर है, यहाँ मेरा पिताजी का मेरा चिरंतन निवास है, मैं इसको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, इसलिए आप मुझे मेरे विग्रह को यहाँ से अपने मंदिर लाने का प्रयास मत करो। तो राजा ने श्री जी की इच्छा जान ली, इससे हम समझ सकते हैं कि जो वो भानुगढ़ है इट इज़ अ इटर्नल होम ऑफ राधा रानी, चिरंतन शाश्वत घर है राधा रानी का, वहीं निवास करती है वो, जहाँ पर उनका महल था वहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया, इतना ही फर्क है, लेकिन वो जगह है जहाँ पर श्री जी निवास करती है। कुछ लोगों ने मुझे पूछा कि ये ऐसे ही था क्या पहले, तो उसका उत्तर है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, अभी 5,000 साल हो गए उसको, कितनी बार जीर्णोद्धार हो गया होगा, कितनी बार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी गोस्वामी लोग चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जब वृंदावन में आए थे तो सब कुछ नष्ट हो चुका था, लुप्त तो हो चुका था, उसको गोस्वामियों ने पुनः स्थापित कर दिया। तो जो श्री जी का महल होगा उसका ऐश्वर्य हम क्या देख सकते हैं, अभी जो है वो पुनर्निर्माण किया हुआ मंदिर है, लेकिन स्थान वही है एग्जैक्टली, हम ऐसे कैसे बताएंगे कितने कमरे थे और कितने दालन थे और कितने महल थे और कितने बैठने की जगह थी, कितने बगीचे थे, वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन स्थान वही है और पर्वत आपके सामने है, वो तो कभी नष्ट नहीं होता है, जैसे है वैसे ही है, और उस पर्वत पर श्री जी का चिरंतन घर है वहाँ पर, इसलिए राजा ने दूसरी विग्रह बनवाए और वहां पर स्थापित किए, और जिनका नाम है राधा कुशल बिहारी। आप लोगों ने दर्शन किया ना उसका, नीचे बहुत सुंदर विग्रह हैं। और जयपुर के राजा राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अभी उसका मेंटेनेंस चलता है, और मतलब सब जो भी है सब जयपुर गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से उसका मेंटेनेंस, पुजारी उनका भोग भंडारा जो भी होता है वो सब राजस्थान के मंदिर की ओर से होता है, राजस्थान की गवर्नमेंट की ओर से होता है। अब वो भी दानगढ़ पे है, जहाँ पर दानगढ़ का मंदिर दर्शन ने किया ना दान बिहारी जी का, उसी गढ़ पर वो जयपुर का मंदिर भी है कुशल बिहारी जी का। और कुछ रह गया क्या वहाँ पर बताना? ठीक है, तो ये मानगढ़ जो है ये बहुत उत्कट जगह है ठाकुर जी की लीला की। यहाँ का जो लीला है वो बहुत ही गहरी लीला है, और मैं तो समझता नहीं कि हम उसके योग्य हैं कि इसको हम समझे, लेकिन जो भी सुना है उसको दोहरा सकते हैं। उसके भाव को दोहराना मुश्किल है बहुत, क्योंकि उतनी हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन जो सुना है उसको दोहरा सकते हैं। जैसे राधा रानी, कृष्ण भगवान और चैतन्य महाप्रभु, ऐसे तीन ही पर्सनैलिटीज हैं जिनके अंदर महाभाव है, और महाभाव जो है वो आठ वस्तुओं से बनता है। एक मिनट रुक के बताता हूँ आपको। राधा रानी जो है वो कृष्ण की परिपूर्णिका है, यानी कि कृष्ण भगवान का व्यक्तित्व जो है राधा रानी की कृपा से पूरा होता है, और कृष्ण भगवान उनके बिना अधूरे हैं। स्वयं परिपूर्ण होने पश्चात भी राधा रानी के बिना वो अधूरे हैं, राधा रानी उनका ही विस्तार है फिर भी उनके बिना वो अधूरे हैं। ऐसे कहते राधा बिना कृष्ण शब्द आधा। राधा है तो कृष्ण के लिए अस्तित्व है और कृष्ण के लिए महत्व है, और राधा रानी से ही ये महाभाव उत्पन्न होता है और फिर श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त होता है। तो उसमें आठ भाग हैं, एक है रति, एक है स्नेह, तीसरा है प्रेम, चौथा है प्रणय, पांचवा है राग, छठवा है अनुराग, सातवा है भाव और आठवा है मान। तो ये प्रेम के अलग अलग हिस्से हैं, रति यानी अट्रैक्शन, स्नेह यानी क्या कहते हैं उसको अफेक्शन, यस अफेक्शन, और प्रेम तो है ही, प्रणय यानी रोमांटिक बिहेवियर जो प्रणय कहते हैं उसको, और राग यानी आसक्ति अट्रैक्शन आल्सो, अनुराग बहुत सूक्ष्म होता है, और भाव जो है वो प्रेम की पहली एक स्थिति है, भाव तो प्रेम का स्थूल भाव कैसे स्थूल स्वरूप जो है प्रेम का उसको भाव कहते हैं। और मान एक विचित्र भावना है, मान यानी कि गुस्सा करना, नाराज होना, रूठ जाना, कई प्रकार से बता सकते हैं। और मान ये जो दुनिया में होता है उससे हमारी आसक्ति बढ़ जाती है दुनिया के विषयों की ओर। इफ वी गेट एंग्री इन द मटेरियल वर्ल्ड इट इज ओनली बिकॉज आवर लस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड। हमारी जो काम भावना है जब वो तृप्त नहीं होती है तब क्रोध आता है, क्यों नहीं पूरा होता, हमारा इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई, हमको ये चाहिए था वो चाहिए था नहीं मिला, नहीं पूरा हो सका, हमको गोल्ड मेडल चाहिए था एग्जाम में लेकिन हम लोग फेल हो गए एग्जाम में, तो क्रोध आता है कि क्यों किसी ने हमारे पर अन्याय किया है, अगर तुमने मेरा इच्छा नहीं पूरा किया तुम्हारी वजह से मैं नहीं हो सका, ऐसे बहुत सारा। जब कोई इच्छा होती है भौतिक इच्छा वो पूरी नहीं होती है तब व्यक्ति को क्रोध आता है, नाराजगी रूठना सब उत्पन्न होता है। लेकिन ऐसे नाराजगी से रूठने से हमारे दुनिया का जो भौतिक बंधन है वो बढ़ जाता है, हम दुनिया के बंधन में और फंस जाते हैं। बाय द एंगर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड वी गेट एंटेंगल्ड इन द वर्ल्ड एंड वर्ल्डली अफेयर्स मोर डीपली। लेकिन यहाँ का जो मान है वो दिव्य मान है, वो स्पिरिचुअल अनहैप्पीनेस है, यू कैन से स्पिरिचुअल अनहैप्पीनेस, स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, जो भगवान की रति को बढ़ाता है, भगवान के प्रेम को बढ़ाता है, भगवान की आसक्ति को बढ़ाता है, और साथ साथ दुनिया की आसक्ति से विमुक्त भी करा देता है। तो ये मान यहाँ का है। और ऐसा आप कहेंगे राधा रानी मान क्यों करती है, उसको भी ईगो है क्या, ऐसे हम बोल सकते हैं, लेकिन वो ईगो नहीं है। ईगो यानी जो हम लोग ईगो समझते हैं वो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है। वो ईगो जो है वो भगवान से अलग हटकर अपना अस्तित्व रखना, इसको फॉल्स ईगो कहते हैं। जो भगवान को भूलकर, भगवान की सेवा को भूलकर, भगवान के आधिपत्य को भूलकर, भगवान के अधिकार को भूलकर, भगवान के पोजीशन को भूलकर जो हम अपने आप को समझते हैं कि मैं हूँ कुछ, और भगवान के सामने भी गर्व से जाते हैं कि मैं धनवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत अधिकारी हूँ पुरुष, वो जो अहंकार है वो भगवान से हमको दूर कर देता है, बहुत दूर फेंक देता है हमको भगवान से। भगवान इतने पास में होने से भी, दयालु होने से भी बहुत दूर हम भगवान से चले जाते हैं। और ये मान जो है वो केवल भगवान के प्रति हमारा और हमारे प्रति भगवान का आकर्षण रति बढ़ाने के लिए जो होता है उसको मान कहते हैं। तो यहाँ की मान लीला है, यहाँ की क्रोध लीला, नाराजगी लीला नहीं है, रूठने की लीला नहीं है, यहाँ की लीला जो है मान लीला है। मान का मतलब जो करने से कृष्ण भगवान का प्रेम हजारों गुना लाखों गुना बढ़ जाता है कृष्ण के, राधा रानी के प्रति, और राधा का भी बढ़ जाता है। तो कई कारण है उसके, राधा रानी मान क्यों करती हैं भगवान से, तो उसके कुछ कुछ कारण मैंने इधर रिकॉर्ड किए हैं। एक बार कृष्ण भगवान ने राधा रानी का गौरव किया कि आपका मुख जो है वो चंद्रमा की तरह है, तो सब लोग खुश हो जाएंगे ना, अगर किसी ने हमको कहा कि आपका मुख चंद्रमा के समान है तो सब लोग, खास करके औरतें बहुत खुश हो जाएंगी, वाह किसी ने हमको चंद्रमा की उपमा दी, यू लुक लाइक मून, चंद्रमुखी। लेकिन राधा रानी खुश नहीं हुई इससे, राधा रानी नाराज हो गई। सो कई कारण है, एक कारण यह है कि वो कहते हैं कि चंद्र का क्षय होता है, चंद्रमा जो है ना गोज ऑन रिड्यूसिंग इन साइज, हमारा सौंदर्य का क्षय नहीं होता है, हमारा सौंदर्य हमेशा बढ़ने वाला है, इसलिए हमें ये उपमा अच्छी लगी नहीं, आपने कुछ गलत समझ के हमारे लिए उपमा लगाई। फिर कहते हैं कि चंद्रमा के मुख पर कई दाग हैं जो यहाँ से भी दिखते हैं, है ना, और हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है, कोई धब्बा नहीं है। फिर कहते हैं कि चंद्रमा जो है वो परप्रकाशित है, सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होकर जो किरणें निकलती है उसको हम चंद्र प्रकाश कहते हैं, लेकिन हमारा प्रकाश जो है वो स्वयं प्रकाश है, हम स्वयं प्रकाशित हैं अपने रूप से, अपने सौंदर्य से, अपने भाव से, और अपने आप में हमारा अपना सौंदर्य है, अपना प्रकाश है, और चंद्रमा जो है परप्रकाशित है। और ऐसे शास्त्र में वर्णन आता है कि चंद्रमा जो है उसके पास में बहुत ग्रह तारे घूमते रहते हैं, तो चंद्रमा को परप्रकाशित इज डिपेंडेंट ऑन द रेज ऑफ सन, इट इज नॉट हर ओन, चंद्रमा इज नॉट हर, doesn't have its own light, it reflects light of sun, it is dependent on sun's light, doesn't have its own light, and Radharani is swayam prakashit, she has her own light. So to chandrama ke aas paas bahut grah tare hote hain, is chandrama ko koi na matlab pativrat ke drushti se dushit mana gaya hai kyunki unke aas paas bahut log ghumte rehte hain, aur mera pativrat jo hai wo kehti hai ki wo ekagra hai aapki or hai। तो चंद्रमा जो है वो उसके कहते हैं कई यार हैं और आप मेरे केवल एक ही हैं, तो कैसे आप मुझे चंद्रमा की उपमा दे सकते हैं। फिर कहती हैं कि चंद्रमा को ग्रहण लगता है, मेरे सौंदर्य को कोई ग्रहण लगता नहीं, कभी भी किसी भी वजह से मेरा सौंदर्य कम नहीं होता है, कोई तिथि हो, कोई घटना हो, किसी भी हो, मेरा सौंदर्य कभी भी कम नहीं होता है, और चंद्रमा को हमेशा ग्रहण लगता है, अलग अलग प्रकार का अलग अलग समय लगता है। और एक लास्ट कारण है जिससे मुझे उपमा अच्छी लगी नहीं, क्योंकि मेरे जो स्पर्धक है, मेरी जो मुझसे जो ईर्ष्या करती है, चंद्रावली, उसका नाम चंद्रमा के अंदर है, इसलिए यू कैनॉट कंपेयर मी विद चंद्रमा। चंद्रावली का नाम आप कैसे मेरे सामने ले सकते हो, अब मुझे उसकी उपमा देते हो इसका नाम, आधा नाम उस चंद्र में है। इस तरह से वो नाराज होकर रूठ जाती, ये एक कारण है चंद्रमा का उपमा देने से। हाँ, तो सोचते हम कुछ और हैं और होता कुछ और है, क्या सोच के उपमा दिया था और क्या परिणाम मिला। परेशान हो गए बेचारे। दूसरा कारण बहुत बार मैंने बताया आपको कथा कथा में कि रासलीला का समय होता है और कृष्ण भगवान लेट हो जाते हैं तो राधा रानी नाराज हो जाती है। उधर ललिता कुंड पे हम गए थे कुछ लोगों को लेकर, वहां पर राजा रानी को झूलने का व्यवस्था किया गया था और राजा रानी लेट हो गई, तो नारद मुनि वहां पहुंचे और उन्हें ललिता जी को बहुत आग्रह किया, अभी अब राजा रानी तो आई नहीं रही है, बहुत देर हो चुकी है, अब तक आप झूल लो कृष्ण भगवान के साथ में। वो तो बहुत संकोच कर रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत जिद किया। सखियों ने बोला हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वो आप झूल लो अभी आज। तो ललिता जी झूला बैठ गई और झूलने लगी कृष्ण के साथ, तुरंत नारद मुनि बरसाने गए और राधा रानी को इन्फॉर्म किया, देखो तुम्हारी जगह बैठ के झूल रही है। तो वो दौड़ दौड़ के आ ही रहे थे, वैसे लेट हो रही थी, देखा तो झूल रहे हैं देखे आराम से, तो बहुत गुस्सा हो गई, वो नाराज होकर बैठ गई। एक बार रास में लेट हो गई, कृष्ण लेट हो गए, तो राधा रानी बहुत नाराज हो गई और सीधे जमुना पार गई। वो जमुना पार जाकर इतनी रोई कि एक सरोवर बन गया वहां पर, मानसरोवर। आपने दर्शन किया कभी किसी ने मानसरोवर का? कितने लोग गए मानसरोवर? बहुत सुंदर जगह है, कभी आपको ले जाएंगे भगवान की इच्छा होगी तो। बहुत सुंदर जगह है, राधा रानी ने अपने प्रेम विरह को वहां प्रकट किया है। वो मान सरोवर इतना पावरफुल सरोवर है कि जब शंकर महाराज रास नृत्य होता है शरद का, शरद ऋतु का रास नृत्य होता है कार्तिक में, तो वो रास में भाग लेने के लिए वहां पर आते हैं, तो अंदर घुसने का प्रयास करते तो तुरंत ललिता जी उनको रोक लेती है। वो कहती है यहाँ पर केवल स्त्रियों को प्रवेश है, यहाँ पर कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वो इतने आतुर है, उनको कोई परवाह ही नहीं है, पुरुष है स्त्री, आप लोग कैसे एंट्री करना है बोलो, बोले आपको गोपी का शरीर धारण करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा उसके लिए, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो कहते हैं जाओ मान सरोवर में स्नान करो, तब आप गोपी शरीर प्राप्त करोगे। तो वो भाग के जाते, सोचते भी नहीं कि मेरा जब मैं स्त्री बनूंगा तो क्या होगा, मेरी पार्वती क्या कहेगी, कुछ नहीं सोचते क्या होगा मेरे परिवार में उसके बाद में, नो थॉट्स। ये सबसे बड़ा त्याग है एक्चुअली कृष्ण के सेवा के लिए। वो कितना भी अपने लिए हंसी मजाक हो या घिलौना हो या कोई इंसल्टिंग वस्तु हो या कोई संकोच वाली वस्तु हो, कोई संकोच नहीं उनको इस बात का। कृष्ण के लिए शिव जी ने क्या क्या नहीं किया, ये पूरी कथा करता हूं पहले। तो स्नान किया भाग के जाकर, और जैसे ही वो बाहर आए तो गोपी बनकर बाहर निकले, और वैसे ही भाग के लौट के आए तो सब सखियां हंसने लगे उनको देख के, अरे कैसी औरत है, सर पे नाग है, काने पे नाग है, हाथ में नाग है, क्योंकि भाव तो उनका था ना वो रास में प्रवेश करने का, वो नाग जो जीव है नाग जी शरीर में है उनका भाव नहीं था, वो तो नाग नाग ही रह गए, शिव जी गोपी बन गए और नाग ऐसे रह गए गले में सर पे और हाथ पे, बोले कैसी गोपी है नाग को लेकर आ रही है रास में प्रवेश करने के लिए। तो सब गोपियों ने उनका बहुत बड़ा श्रृंगार किया है, क्योंकि वैसे गले भाग किया है ना वो, तो उनका बड़ा श्रृंगार करके गोपेश्वर बना के उनको वो ललिता जी हाथ पकड़ के रास के अंदर ले जाती है, और वहां पर उनको रास का दर्शन भी होता है, बाद में चामर देती है उनके हाथ में और चमर सेवा भी ठाकुर जी की करते हैं, और फिर उनको वापस बाहर लेके आते रास मंडल के और कहते अभी यहीं रहो और रास मंडल की रक्षा करो आप हमेशा। तो बंसीवट पे जो रास मंडल है, जो सबसे पहला रास भगवान ने वहां रचाया था बंसीवट के पास में, उसके पास में गोपेश्वर महादेव का मंदिर है, और हर शाम को वो गोपेश्वर जो लिंग है शिवलिंग जो है उसको गोपी बनाते हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, साड़ी पहनाते हैं, अलंकार पहनाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, गहने लगाते हैं, और उनके वो भाव जो है उसकी पूजा होती है। तो और एक बार उन्होंने कहा था कि ठाकुर जी को बताया कि हमारा जो आपका जो मोहिनी स्वरूप है वो हमको दर्शन करना है, विष्णु जी को बताते हैं। तो विष्णु कहते हैं आप पागल हो जाओगे, आप मत ऐसा मांगना मेरे पास कुछ, नहीं नहीं हमको दर्शन करना है, बिल्कुल दर्शन करना है। तो बोले आंखें बंद करो, आंखें खोलने के बाद एकदम सुंदर स्त्री उनके सामने जो स्वयं विष्णु जी हैं, विष्णु जी सर्व सौंदर्य संपन्न हैं, और वो स्वयं जब स्त्री बनते तो कितने आकर्षक होंगे वो, और वो भागने लगती है। तो शिव जी पागल हो जाते हैं, औरत के पीछे नहीं, अपने आराध्य दैवत जो है विष्णु उनके लिए भागते हैं, लेकिन दुनिया क्या देख रही है, अरे सबसे विरक्त बाबा जो हैं कैलाश में रहते हैं, ना कुछ फकीर जैसे रहते हैं, वलकल पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, ना कुछ आसक्ति है कुछ नहीं है, और उनके लिए उनकी विरक्ति को प्राप्त करने के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो सब बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, उनको भजते हैं वो। तो लोग क्या देख रहे हैं, देखो बड़े विरक्त बाबा जो हैं सुंदर स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, और वो स्त्री भी कैसी है, जब भाग रही है तो एक एक वस्त्र को उठाकर फेंक रही है, ऐसे एक एक वस्त्र को फेंक रही है और भाग रही है आगे 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 आगे, उसके पीछे ही भाग रहे हैं। और वो विष्णु जी भी इतने चतुर हैं, वो अपने भक्त का जो गौरव है पूरा दिखाना चाहते हैं कि मेरा भक्त कितना गौरवशाली है। तो भक्त भी कहाँ से हैं, जहाँ अनंत ऋषि मुनि शिव जी की आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं विरक्ति के लिए, उनको पूछते हैं, उनके बीच में से भागते हो। तो जब वो भागते हैं मोहिनी मूर्ति, तो सब ऋषि मुनि परेशान होते, वो आंखें बंद कर लेते हैं एकदम से, ये क्या दर्शन है, यहाँ तक ठीक था, चलो कोई औरत भाग रही है। फिर जब ऊपर देखते हैं तो क्या आते हैं, उनके गुरु, उनके जो आराध्य है, वो भाग रहे हैं उनके पीछे। ये सबसे ज्यादा आश्चर्य था उनके लिए, परेशान हो गए वो। लेकिन शिव जी की जो विरक्ति है वो इतनी श्रेष्ठ और सूक्ष्म है कि मेरे शिष्य मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी एक होता है ना मन में थोड़ा सा, एटलीस्ट आई शुड बिहेव प्रॉपरली। मैं कैसा भी रहेगा लेकिन मैं शिष्य सामने आएंगे तो मैं एकदम, कल मुझे एक SMS आया था बहुत बढ़िया, पर्सनैलिटी इज वॉट यू आर एंड हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, एंड कैरेक्टर इज वॉट यू आर एंड हाउ यू बिहेव व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू। समझ में आया आपको, पर्सनैलिटी वो होती है जो हम कैसे, हम क्या सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, जब जनता हमको देख रही है तब हम क्या सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, उससे हमारा व्यक्तित्व बनता है। लेकिन चरित्र किससे बनता है, कि हम क्या सोचते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं जब हमें कोई नहीं देखता, तब हमारे मन में क्या विचार आते हैं, वो हमारा असली नेचर है, दैट इज कैरेक्टर। और वो कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है, उसको डेवलप करना चाहिए भक्ति के मार्ग से, और वो चरित्र जो है वो पूरी तरह से भगवान से समर्पित होना चाहिए, तो फिर हमारा जीवन संपन्न हो गया, सफल हो गया। दैट कैरेक्टर वी हैव टू प्रोड्यूस। तो ये बात कहां से निकली थी, हाँ, तो शिवजी महाराज, हाँ, चरित्र उनका इतना श्रेष्ठ है कि वो क्या कर रहे हैं वो सोच नहीं रहे हैं, किसके बीच में से भाग रहे हैं वो इनको परवाह नहीं उसकी। He doesn't care about what people think about him when he is running after his Lord। दुनिया के लिए तो वो श्री है, लेकिन उनके लिए पता है कि वो मेरे आराध्य भगवान है, उनके बीच में से भागते हैं वो, ऐसे हैं वो। तो वो मान सरोवर था, उसमें उन्होंने स्नान किया था और गोपी का शरीर प्राप्त किया था। तो राजा रानी, वो एक कारण हो गया कि रास में लेट हो गए तो मान कर बैठे, और एक सुंदर कारण है उनका मान करने का, क्योंकि राधा रानी जो है ना, सभी रसों की, सभी कलाओं का उगम है वो। वो जो मुरली बजाते हैं ना, वो बजाना भी राधा रानी ने उनको सिखाया है, राधा रानी की देन है उनको, वो गुरु है राधा रानी, कृष्ण भगवान की मुरली बजाने में। कई ब्रज में चित्रपट मिलेंगे आपको, राधा रानी ऐसे बैठी हुई है, कृष्ण उनको चरण में बैठे हुए हैं, वो पैर ऊपर करके बैठी है, बजा रही है, और कृष्ण भी उनके पैर बजा रहे हैं। तो उनको नृत्य भी सिखाती है, उनको गायन भी सिखाती है, उनको हर चीज सिखाती है। तो एक बार उनको नृत्य सिखा रही थी, और कृष्ण भगवान बहुत, मतलब जब सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए थे ना, तो झटपट उन्होंने सब सीख लिया था, मतलब जो आम आदमी कई साल तक नहीं पढ़ेगा वो उन्होंने झटपट सीख लिया था, पूरा 18 विद्या आत्मसात कर लिया था, इतने होशियार है वो। लेकिन राधा रानी से जब नृत्य सीख रहे हैं तो राधा रानी उनको एक एक कदम दिखा रही है, और वो जानबूझ के रॉन्ग स्टेप डाल रहे हैं, क्योंकि वो, उनका अधिक ध्यान उनको चेहरे के देखने की तरफ है, इतना सुंदर चेहरा है उनका, चेहरा वो निहार रहे हैं, और जितना अधिक समय सीखने में लगेगा उतना अधिक समय उनको देखने को मिलेगा, इसलिए वो और देर लगा रहे हैं सीखने में, बार बार उनको सिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं, फिर रॉन्ग स्टेप डाल रहे हैं। तो कैसे बुद्धू हो तुम नंद के लाला, हाँ, गवार बालक हो, ऐसे करो, फिर ऐसे करके दिखाती है। लेकिन कुछ देर बाद समझ जाती हो कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। वो समझ में आता है कि ये जो है ना वो शैतान बालक है, वो जानबूझ के रॉन्ग स्टेप डाल रहे हैं। उनको समझ में आया मैं क्या कर रही हूँ, उसमें वो समझ सीख भी गए हैं लेकिन मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो बहुत देर प्रयास करके ना एकदम गुस्सा होकर चले जाते हो, उसको अच्छा लगता नहीं, क्या है सब, यू आर वेस्टिंग माई टाइम, मेरा मजाक कर रहे हो आप, हाँ, मुझसे नचवा रहे हो और खुद देख रहे हो, मेरे चेहरे को देखते रहते हो, तुम फिर ऐसे मान करते हो। ऐसे अनंत कारण हैं। सूरदास जी ने भी अपने सूर पत्रिका में मान लीला का बहुत वर्णन किया है, अनंत कारण है और सबका सभी कारणों का मान करने का एक ही उद्देश्य है कि राधा रानी का प्रेम कृष्ण से बढ़े, कृष्ण का प्रेम राधा रानी से बढ़े। और चंद्रावली को भी उन्होंने निर्माण किया है, चंद्रावली उनका विस्तार है, उनके शरीर से उत्पन्न हो गई है, और चंद्रावली की लीला भी उसी के लिए है, ईर्ष्या बढ़ाने के लिए, स्पिरिचुअल ईर्ष्या, हाँ, आध्यात्मिक जो कंपटीशन है वो बढ़ाने के लिए चंद्रावली बन जाती है राधा रानी स्वयं, और कंपटीशन उत्पन्न करती है और उसमें से प्रेम बढ़ते रहता है, प्रेम की वृद्धि करने के लिए मान करते हैं। तो ऐसे ही एक लीला में मान करके वो मानगढ़ के नीचे आ गई, तो सब सखियां नाराज हो गई, अरे राजा रानी रूठ गई, क्यों तुमने ऐसा किया, क्यों तुमने ऐसी शरारत की। अभी कृष्ण भगवान बोले माफ करो, अभी क्या करें, अभी प्लीज फॉरगिव मी, अभी तो रूठ गई वो, अभी क्या करना है। तो फिर ललिता जी बहुत परेशान हो जाती है, तो राधा कृष्ण और ललिता डिस्कस करते हैं, तो कहते हैं अभी आप जाके उनको मनाओ। तो ललिता जी आती है उनके पास मनाने के लिए, तो वो दो कदम और ऊपर बढ़ जाती है, तो वो दो कदम और चढ़ती है ऊपर, तो और वो मनाती है तो और दो कदम चढ़ जाती है, तो बोलते चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं किसका मानने वाली हूँ। तो फिर नीचे आती है, कृष्ण से मिलते वो नहीं मान रही है, तो कृष्ण कहते हैं तो दोबारा ऊपर जाओ, तब तक वो चार कदम ऊपर चढ़ गई होती है। ऐसे करते करते ललिता जी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे यात्रा कर रही है, और जितना ऊपर जा रहे उतने राधा रानी ऊपर 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 और चढ़ रही है, मतलब उसका मान बढ़ रहा है, एक दृष्टि से ऊपर ऊपर जा रही है और एकदम शिखर पे जाके बैठती है। तो ललिता जी कहते मैं तो परेशान हो गए, मैं तो थक गई अभी ऊपर नीचे करके, अभी क्या करूं मैं, नहीं मान रही है वो। तो फिर सब सखियां आती है, और आपने चित्रपट देखा है उधर, वो चित्रपट था ना मंदिर में, उसी का ब्लो अप यहाँ पर रखा है, ठीक से देखो उस चित्रपट में, नीला सा बालक जो है बहुत परेशान है, रो रहा है, और उसका हाथ ललिता जी ने पकड़ा है, दाहिना हाथ, और राधा रानी का बायां हाथ पकड़ा है, और दोनों हाथ मिलाने का प्रयास कर रही हूँ, राधा रानी उधर देख रही है, कृष्ण जी यहाँ से मना रहे हैं तो वो उधर देख रही है, कृष्ण जी वहां से आते तो यहाँ देख रही है, बिल्कुल ही नहीं देख रही उनकी ओर, एक बार भी नहीं देख रही है। कृष्ण बहुत रोते हैं, फिर भी नहीं मानती है। फिर कृष्ण जो है वो गीत गाते हैं उनको रिझाने के लिए, फिर भी नहीं मानती है। फिर कृष्ण उनका गौरव करते हैं, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बताते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो भी नहीं मानती है। फिर वो चरणों में गिर जाते हैं उनके, वो चरण पकड़ पकड़ के उनकी विनती करते हैं, फिर भी नहीं मानती है। चरणों में अपना सर रखते हैं, आप सोच सकते हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक, विश्व का रचयिता, सर्वशक्तिमान, गोलोकाधिपति, चरणों में गिर रहे हैं, विनती कर रहे हैं प्रेम के वश। हाँ, प्रेम ही ऐसी वस्तु है जो भगवान को ऐसी स्थिति में ला सकती है, प्रेम का प्रभाव, प्रेम का गाढ़ापन जो है। फिर भी नहीं मानते तो साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं, और दंडवत प्रणाम करके जिस रज से वो चल के आए उसमें लोटपोट हो जाते हैं, ये रोल्स इन द डस्ट, फिर भी वो नहीं मानती। फिर ललिता जी और विशाखा और सब बहुत दुखी हो जाते हैं, अभी क्या करें, इसे कैसे इसका मान भंग करें। तो फिर ललिता जी कहती हैं कृष्ण को, अभी आप जाओ और मुरली बजाओ। तो भगवान मुरली बजाते हैं, और कहले मैंने आपको बताया था चरण पहाड़ी पे कि मुरली ही ऐसी एक वस्तु है, जब मुरली बजती है भगवान के दिव्य होंठों से, तो उसके प्रभाव से सब मान जो है पत्थर की तरह पिघल जाता है, मान पत्थर की तरह होता है ना, सख्त होता है बहुत, जब मुरली बजती है तो मान पिघल जाता है पत्थर की तरह। और उतना ही नहीं होता है, जब मुरली बजती है तो मोर वहां से भाग भाग के आते हैं, क्योंकि मुरली मनोहर जब मुरली बजाते हैं तो मोरों के लिए बहुत आकर्षक चीज है वो, सब भाग भाग के आते हैं, अपना पंख फुलाते हैं। हाँ, जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाओ, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, भगवान की मुरली बज रही है, सोने का समय नहीं है, मोर नाच रहे हैं, आपको भी नाचना है अभी। तो मोर आते हैं तो बादल के हैं, हम को रुके तो सब बादल भी आ जाते हैं, और बहुत सुंदर वर्षा होने लगती है, और उसको देखकर मोर नाचने लगते हैं, सब मोर नृत्य करते हैं, और उन मोरों को देखकर ठाकुर जी देखते हैं और राधा रानी देखते हैं, तो उनका मान भंग हो जाता है। ये एक पार्ट है उसका, एक लीला है। अलग समय पे क्या हुआ है, एक बार मोर का नृत्य देख के वो मान उनका भूल गई थी, दूसरी बार जब मान किया तो ललिता जी ने कहा कि आप जाके नृत्य करो अभी मोर बन के, तो कृष्ण बोर बनकर आए और बहुत सुंदर नृत्य किया, इतना सुंदर नृत्य किया, उनका पद लालित्य, उनका जो पदन्यास इतना सुंदर था कि ललिता जी ने कहा देखो देखो कितना सुंदर मोर आया है। तो देखती है और इतना सुंदर नाच कर रही है, तो बहुत उनको आकर्षण होता है मन में। तो वो जब जैसा उनका नृत्य आगे बढ़ता तो इसकी खुशी बढ़ती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि इतनी खुशी होती है कि वो खुद जाकर नाचने लगती है उनके साथ में, और वो खुद मोरनी बन जाती है, और मोर और मोरनी दोनों नृत्य करते हैं, सुंदर नृत्य करते हैं। और बहुत देर बाद नृत्य करने के बाद मोरनी मोर को गले मिलती है, तब देखते तो ये कृष्ण है समझ जाती, तब तक तो उनका मान बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। और कई बार मान भी नहीं हुआ है उनका, लेकिन ललिता जी और विशाखा जी प्लान करती हैं कि अभी आज दोनों मोर बन के नृत्य करेंगे, तो वही मोर लीला हुई है। ऐसे अनेक 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 विविध कारणों के कारण से यहाँ पर मोर लीला हुई है, एक ही कारण नहीं है। तो मुरली मोर कभी बनना, कभी खुद बनना, कभी दूसरे को बनाना, ये सब विविध प्रकार से मोर लीला यहाँ पर हुई है। और वो जो मोर कुटी है वो आपको वहाँ दिखाई पड़ेगी जब जाएंगे हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद, मोर कुटी वहाँ पर वो नृत्य हुआ था। वहाँ पर अनंत काल के लिए मोर नाचते हैं और भगवान को रिझाते हैं, और कुछ कुछ मोर नृत्य जो है वो मान लीला के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ कुछ मान लीला के बिना ही मोर नृत्य करते हैं। सब सुंदर दृश्य है यहाँ पर। और जैसे कि कृष्ण भी राधा रानी को रिझाने का प्रयास करते हैं प्रेम के कारण, राधा भी रुड़ती है वो प्रेम के कारण, एक दूसरे का प्रेम बढ़ाने के लिए। सखियां भी बहुत प्रेम से उनको रिझाने का प्रयास करते हैं, मान को भंग करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो बहुत चाहते हैं दूसरे को, इसलिए ये मान लीला करते हैं। तो ये भी मानेंगे वन मान घड़ का एक भाग है, जहाँ पर आके राधा रानी रूठ जाती है, सखियां आके उनको मनाती है, दूसरा से मान लीला संपन्न होती है। वो जो मोर कुटी है वहां पर जो मोरों ने नृत्य किया था, ये ब्रज में बहुत फेमस चित्रपट है, सब जगह आप जाएंगे तो आपको ऐसे राधा रानी का हाथ और ऐसे कृष्ण का हाथ के हुए, सब जगह मोर बने हुए, ऐसे दोनों का हाथ मिलके ऐसे पूरा पंख बने हुए, ऐसे आपको दर्शन मिलेगा, बहुत चित्रपट मिलते हैं यहाँ पर। तो वो जो मोर लीला है वो यहाँ की बहुत फेमस लीला है। तो उसके कई साल की बात है, बात की हजारों साल की बात, अभी अभी 400-500 वर्ष पहले की बात है। मोर कुटी में एक अंध बाबा रहा करते थे, अंधे संत थे वो, और वो इतने प्रभावी संत थे, जैसे मैंने कहा संत लोग जब जहाँ रहते ना उनके प्रभाव से हिंसक प्राणी भी एकदम माइल्ड बन जाता है, सौम्य बन जाता है। कोई खूंखार जानवर होता ना, हे शेर और भेड़िया और फॉक्स और लांडगा सब बहुत सारे, सब एकदम शांत हो जाते हैं। तो उनका एक सिंह शिष्य था, और वो सिंह जो था बिल्कुल शाकाहारी था, और केवल गुरु महाराज उसके गले में एक थैली लटकाते थे, और वो गुरु महाराज के शिष्य के रूप में मानपुर में जाकर भिक्षा करता था। आप सोच सकते हैं क्या, आपके घर दरवाजे में बेल बजती है टिंग टोंग, और आप खोलेंगे तो आपको शेर नजर आएगा सामने, एक सिंह खड़ा हुआ है, तो हाउ विल यू फील। हाँ, पोस्टमैन नहीं है, दूध वाला नहीं है, कचरे वाला भी नहीं है, शेर खड़ा है और वो डरका नहीं रहा आपको, बोले भिक्षा दो, भगवती भिक्षा दे ही ऐसा अनोखा दृश्य है ब्रज में। ब्रज में क्या नहीं हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो वो सिंह जो है वो गले में थरी लटका के द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगता है, और रोटी वोटी जो मिलती है वो लेके आके पहले गुरु को अर्पण करता है, गुरु उसको अमनिया भगवान को अर्पण करते हैं और खुद पाते हैं, बची हुई रोटी जो प्रसादी है वो ये सिंह पाता है। ऐसे वो महात्मा थे, अंधे थे। तो एक बार राधा रानी को सपने में आई उनके, और उन्होंने कहा कि आप ये जो मेरा मोर लीला का दर्शन है मेरा, उसका चित्रपट निकालो। तो देखे कैसे मुमकिन है, मैं तो अंधा हूँ, मुझे क्या दिखाई पड़ता है, मैं कैसे चित्रपट निकालूंगा। बोले वो आपकी समस्या नहीं है, मेरी कृपा से सब कुछ हो सकता है। तो उन्होंने सब सामान लाया, और राधा रानी ने रोज उसको स्वप्न में अपनी मोर लीला का दर्शन दिया, जैसे कि रोज मूवी चल रही है, मूवी उसके मन में स्वप्न में, और स्वप्न में रोज दर्शन कर रहा है वो कि कृष्ण राधा मोर बनकर नाच रहे हैं। और राधा रानी की कृपा से वो अंधे व्यक्ति ने दिन में जो उसको रात के सपने में दर्शन किया है, वो दिन में उसने वो चित्रपट निकाला और कई दिन में उसको पूरा किया। वो चित्रपट जो है जो उस अंधे संत ने निकाला था, वो आज भी मोरकुटी में विराजमान है, उसी की पूजा वहां पर होती है। तो आप लोग जब जाएंगे तो अंदर आप देखना, वो चित्रपट जो है वहां पर रखा गया जो अंधे संत ने निकाला था, और मोरकुटी का विग्रह वही है, वो चित्रपट है। तो इस तरह से मूल लीला संपन्न हुई है यहाँ पर। और एक आपको और एक बताता हूँ चित्रपट लीला यहाँ की, यहाँ से निकलने के पहले, कि राधा रानी की कृपा क्या कर क्या नहीं कर सकती है। एक बार ये श्री जी के मंदिर के सीढ़ियों पर एक भंगी जो था वो झाड़ू लगा रहा था। यहाँ पर वो झाड़ू लगाना नहीं बोलते, यहाँ पर बुहारी करना बोलते हैं। बुहारी करना एक बहुत श्रेष्ठ वाक्य है, श्रेष्ठ वाक्य प्रचार है। बुहारी करना यानी कि साफ करना। तो वो राधा रानी की सीढ़ियों की बुहारी कर रहा था, और सीढ़ियों की बुहारी करते करते गीत गा रहा था, वृंदावन 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 कहिए, वृंदावन का गौरव कर रहा था, राधा कृष्ण को भजिए, राधा कृष्ण के स्मरण करते हुए भजन गाते हुए आंखों में आंसू लेकर वो बुहारी कर रहा था, इतनी प्रेम से कर रहा था। अल्टीमेटली हमारे कैंप में हम लोग इसी बात को समझने का प्रयास करते हैं कि सेवा जो है वो छोटी बड़ी कभी होती नहीं है, सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, कोई छोटा काम बड़ा काम नहीं होता है, हर काम जो भगवान की सेवा में होता है वो श्रेष्ठ होता है। और उस पर उससे भी श्रेष्ठ क्या होता है, वो किस भावना से उस सेवा को करते हैं, वो भावना सबसे श्रेष्ठ होती है। नो वर्क इज लोअर और हायर, द मूड बिहाइंड द वर्क मेक्स इट हायर और लोअर। तो ये बुहारी कर रहा है, मतलब फोर्थ ग्रेड काम कर रहा है ना, हमारी मैनेजमेंट लैंग्वेज में फोर्थ ग्रेड वर्क, हाउसकीपिंग वर्क। लेकिन उसका भाव इतना श्रेष्ठ है, इतना भक्तिपूर्ण भावना से वो श्री जी के मंदिर के सीढ़ियों की बुहारी कर रहा है कि श्री जी और श्याम चंद्र जी वहां प्रकट होते हैं। और जहां नीचे वो बुहारी कर रहा है उसी के ऊपर एक शाखा है पेड़ की, उसके ऊपर प्रकट हो जाते हैं और ऐसे पैर हिलाकर बैठ रहे हैं उसके ऊपर दोनों। और श्री जी कह रही है देखो कितना अच्छा भक्त है, कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, इसके भाव को देखो, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं, मेरे मंदिर की सीढ़ी साफ कर रहा है, कुछ कृपा करो इसको आप। तो कन्हैया जी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, कोई कृपा होनी चाहिए इसके ऊपर। तो श्री जी आप क्या चाहती हैं? तो श्याम सुंदर जी को श्री जी बोलती हैं आप अपना अंगरखा उनको उतार के दे दो, उसको भेंट में दे दो। तो श्याम सुंदर जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो अंगरखा मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, सुबह पहना के भेजा था, मैं नहीं दे सकता उसको, मैं नहीं दूंगा उसको, नहीं नहीं दे दो उसको, कुछ ना कुछ भेंट करना चाहिए। तो बहुत देर बाद श्री जी बनाती है तो कृष्ण भगवान नहीं मानते उसको, बोले कोई बात नहीं, नहीं चाहिए आपका अंगरखा, मैं अपनी शाल दूंगी उनको, मैं नहीं परवाह करती मेरी माँ और पिताजी क्या बोलेंगे, मैं तो इस पर कृपा करूंगी करूंगी। तो वो ऊपर बैठे हैं ऐसे पैर हिलाते हुए बैठे हैं शाखा पर, तो अपनी शॉल उतारती है और नीचे फेंक देती है और वो उस पर गिर जाती है। और उस पर गिरती है वैसे वो कांपने लगता है आनंद से, भाव विभोर हो जाता है, आंखों से धारा बहती है अश्रुओं की और बेहोश होकर गिर जाता है। ये कृपा का अर्थ समझते हैं आप? राधा सुधा निधि नाम का एक ग्रंथ है जो प्रबोधानंद सरस्वती ने लिखा हुआ है। हाँ, उसमें सबसे पहला श्लोक जो है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है, जो पहला श्लोक है उसका अर्थ यह है कि राधा रानी चल रही है, बड़े थाट से चल रही है, बहुत सुंदर वस्त्र पहन के हुए, शॉल धारण किए हुए, उत्तरीय वस्त्र है उनका, जिसको यहाँ पर फरिया कहते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। तो बहुत सुंदर कोमल शीतल मुलायम हवा आ रही है, कोमल शीतल और मुलायम हवा बह रही है, पुष्पों का गंध लेकर वहां से जो भी पुष्प खिल रहे हैं उसका सुंदर पुकेसर के लेकर, जरा कल्पना करने का प्रयास कीजिए। हाँ, सोइए मत रामशरण जी महाराज, हरि बोल। तो हवा आ रही है और वो हवा चलते हुए राधा रानी के वस्त्र को छू रही है और वहां से परावर्तित हो रही है, यू नो इट इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम देयर एंड कमिंग इन वन डायरेक्शन। उस दिशा को श्याम सुंदर जी प्रणाम करते हैं, समझ सकते हैं आप? जिस दिशा से हवा परावर्तित होकर राधा रानी के वस्त्र को छूकर आ रही है उस दिशा को श्याम सुंदर जी प्रणाम करते हैं। तो आप समझ सकते हैं वो शॉल का हवा की दिशा को प्रणाम कर रहे हैं, वही शॉल उसके ऊपर गिर गया, तो कितनी बड़ी कृपा हुई उसके ऊपर, प्रेम भक्ति से गदगद हो गया वो। तो राधा रानी की कृपा जो है ना वो पत्थर को भी पिघला सकती है, पत्थर दिल व्यक्ति को भी भक्ति से पागल कर सकती है। तो वैसे ही एक और लीला है कि ये जो ग्वाल बाल जो थे वो रोज दिन में लीला करते थे, है ना, दिन भर गौ चराना, यहाँ जाना वहां जाना, पेड़ पे कूदना, गेंद खेलना, जल में कूदना, जल में गेंद खेलना, लुका छुपी खेलना, पानी के अंदर जाना, ऊपर निकलना, ऐसे बहुत लीला करते हैं। और भोजन करते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर राधा रानी सॉरी फिर बलराम जी और श्याम सुंदर जी का चरण दबाते हैं ग्वाल बाल, फिर उनको हवा देते हैं, लड्डू खिलाते हैं, फिर वापस चलते हैं, गीत गाते हुए हंसी मजाक हास परिहास करते हुए घर लौट के आते हैं। लेकिन जब शाम का समय आता है तो ये सब ग्वाल बाल आतुर और व्याकुल हो जाते हैं, और सखिया भी व्याकुल हो रही है क्योंकि उनके मिलने का समय हो रहा है, इनके मिलने का समय समाप्त हो रहा है। तो श्याम सुंदर जी को छोड़ते समय सब ग्वाल बाल रोते हैं कि अभी रात भर दर्शन नहीं होंगे इनके। इसमें सुदामा जी जो है, जो राधा रानी के बड़े भाई हैं, वो ज्यादा सबसे व्याकुल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, बहुत रोते हैं और रात भर सोते नहीं है वो विरह से कि कब सुबह होगी और कब उसकी मुरली बजेगी और कर हम श्रृंगार करके भागेंगे उनके पीछे गौ चराने के लिए। तो सुदामा जी आके एक बार बोलते हैं, देखो श्याम सुंदर जी, ये आपके बिना रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, रात भर मैं अकेला रहता हूं और आप अपने घर रहते हो, मुझे कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मैं थोड़ा विरह मेरा कम हो जाए और आपके बिना मैं जी सकूं रात को। तो वो चर्चा करते हैं और उनका निर्णय होता है कि ये चित्रपट बनना चाहिए, दे शुड बी वन पेंटिंग। अभी हमने महेश को चलकर है, किधर गए हो, कहां वन में घूम रहे क्या, हरी बोल, हाँ सो रहे हैं, नाराज हो गए, मान लीला कर रहे हैं क्या, हरे कृष्णा। तो तभी तो फोटोग्राफी कैमरा सही नहीं था ना, 10 मेगापिक्सल और 20 मेगापिक्सल। तो उन्होंने कहा कि एक चित्रपट होना चाहिए उनका। तो पहले पहले तो कृष्ण भगवान ने मजाक किया उनका, क्या चित्रपट है, क्या कुछ नहीं है, रहो ऐसे ही। लेकिन उसकी व्याकुलता और कहने की तीव्रता बढ़ गई रोज के रोज। तब उन्होंने गंभीरता से लिया और कहा कि नहीं नहीं भैया, मैं कुछ करूंगा आपके लिए। तो तब ठाकुर जी माँ के पास गए और माँ से कहा उन्होंने कि मेरा सखा जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी है और उसे मेरा एक चित्रपट बना के देना चाहिए। तो माता ने भी मजाक किया उसके साथ में, अरे क्या आपका चित्रपट बनाना है, एक कागज ले लो, एक ब्रश ले लो, काला रंग ले लो, दो चार हाथ मार लो, दे दो उसको, हो गया तुम्हारा चित्रपट। अरे माता मजाक मत करो, ये हास परियास का समय नहीं है और मैं इतना काला कलूटा नहीं हूं कि आप दो चार ब्रश मार दो मेरा चित्रपट बन जाए, हाँ मैं भी कुछ हूं। तो पहले मजाक कर दिए माता, लेकिन बाद में समझते कि बेटा भी बहुत गंभीर है इस विषय में। बोला कोई बात नहीं, माफ करना, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। तो वो जानती है जो चित्रा सखी है, अभी इधर से उतरेगा नीचे तो सीधे हम चित्रा सखी के गांव में उतरेंगे, इसका नाम चिकसोली, चिकित्सपुर। तो चित्रा सखी बहुत एक्सपर्ट है चित्रपट निकालने में, तो उनको याद करती है, बुलावा भेजती है। चित्रा सखी बहुत खुशी हो जाती है कि राधा रानी सॉरी श्याम सुंदर की मैया ने मुझे बुलाया है, कुछ बहुत उत्कट सेवा देनी होगी मेरे लिए। बहुत खुश होकर वहां पहुंचती है, तो कहती है कि श्री कृष्ण का श्याम सुंदर जी का चित्रपट निकालना है। बोला ठीक है मैया, मैं निकालती हूँ। बड़ी खुश हो जाती है कि इतनी व्यक्तिगत सेवा मुझे मिली। आती है, पूरा तैयारी करती है। अभी कैसे होता है ना, चित्रपट निकालने के लिए समझो भाई मेरा मेरे को आपका चित्रपट निकालना है तो मुझे कहना पड़ेगा आपके ऐसे बैठो, अभी आप कुछ देर आपको एक ही छवि में बैठना पड़ेगा, एक ही पोजीशन में। ऐसे नहीं कहा आप यहाँ डोल रहे हैं, वहां डोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तो मैं क्या निकालूंगा, व्हाट आई विल ड्रॉ, यू नो इम्पॉसिबल। तो चित्रपट जिसका निकालना होता है उसको एक पोजीशन में बैठना पड़ता है। हम बोले थोड़ा हंसो, थोड़ा उधर देखो, ऐसा एक छवि तैयार करेंगे। तो वो ध्यान में बैठती है और एक कृष्ण के छवि पर अपना मन केंद्रित करना चाहती है जिसको देखकर उसको चित्रपट निकालना है। लेकिन जैसे ही वो बैठती है ध्यान में, कृष्ण की अनंत अनगिनत करोड़ों छवियां उसके मन में आ जाती है और कोई भी स्थिर रहती नहीं मन में, सब एक एक बात से मूविंग मूविंग मूवी, यू नो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चित्रपट उसके मन में तैयार हो जाते हैं और किसी भी छवि पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है क्योंकि अनंत छवियां एक साथ प्रकट हो रही है। तो अभी क्या करूं मैं, इतनी मुझे उत्कट सेवा मिली श्याम सुंदर की मैया की तरफ से, श्याम सुंदर के लिए विशेष सेवा मिली है, लेकिन मैं नहीं कर सकती उसको सेवा को क्योंकि मैं एक छवि पर मन एकाग्र नहीं कर सकती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मेरा मौका अवसर मेरा जो है वो अभी मेरे हाथ से निकल जा रहा है। तब उसको ध्यान में आते हैं, विचार करती हूँ कि अरे मैंने राधा रानी की कृपा तो ली ही नहीं, उनके पास तो मैं कृपा लेने के लिए गई नहीं, उनकी कृपा लिए बिना कैसे मैं श्याम सुंदर का चित्रपट निकाल सकती हूँ। नॉट पॉसिबल। तब वो समझ जाती है कि कोई भी कृष्ण की सेवा है वो राधा रानी की कृपा से संपन्न बिना संपन्न नहीं हो सकती है। उनकी कृपा होगी तो ही हम कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। जो भी हम भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, बिना राधा की कृपा से उनकी सेवा में कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर वो राधा रानी के पास जाती है, अपना प्रस्ताव विनती रखती है, प्रार्थना करती है कि आप कृपा कीजिए कि मेरे हाथ से श्याम सुंदर का चित्रपट बने। तब राधा रानी उनको आशीर्वाद देती है, तब जाकर एक छवि आकर उनके मन में बस जाती है। तब उस छवि को मन में ध्यान में रखते हुए, चिंतन करते हुए, प्रेम से चित्रा सखी जो है श्याम सुंदर का चित्रपट निकालती है और चित्रपट लेकर भाग के मैया के पास आती है। मैया शाम को जब लौट के आते हैं, श्याम सुंदर जी उनको देते हैं और श्याम सुंदर जी चित्रपट को श्रीदामा को देते हैं और श्रीदामा फिर रात भर उसको देखते रहते हैं। इस तरह से ये चित्रपट लीला संपन्न होती है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ऐसे सब ब्रज का सुंदर सुंदर लीला है और आप लोग बड़े भाग्यवान हो और ब्रज में इस सुंदर वन में, उत्कट वन में आए हो। यहाँ बैठकर प्रार्थना करो कि ये जो प्रेम लीला का रहस्य है ये हमारे थोड़ा बहुत समझ में आ जाए ताकि हम भी उनमें आपकी सेवा कर सकें। हम लोगों को कोई पंडित नहीं बनना है कि मुझे भी पता है लीला, ये बोला मुझे भी पता है, मैंने सुना है ऐसे वैसे, वो हमको नहीं करना है। हमको कोशिश करना है कि इन लीलाओं में हम कुछ सेवा कर सके, कोई हाथ बटा सके भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ठाकुर भक्ति विनोद जी कहते हैं कि मुझे कहीं नहीं शरीर छोड़ना है, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं कुरुक्षेत्र में सन्निहित सरोवर के पास शरीर छोड़ना चाहूंगा या कुछ मेहनत करना वहां चाहूंगा मैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि गोपियां और राधा रानी सबसे बड़ी असहाय अवस्था में कुरुक्षेत्र में थी जब कृष्ण उनके सामने विराजमान थी और वो कुछ नहीं कर पाई, ना कुछ बोल पाई, ना कुछ कर पाई, ना कुछ उनको जो करना था उनसे कुछ भी नहीं कर पाई वो। तो उनकी असहाय अवस्था में मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, ऐसे उन्होंने एक भजन में लिखा है। ये सब भाव की बातें हैं, वो ऐसी जरूरत नहीं कुरुक्षेत्र जाए वहां बैठे। भाव क्या है कि मैं, मुझे गोपियों की लीला में सहभाग नहीं देना है, मुझे सेवा करने वहां जाके मैं उसमें सेवा में क्या कर सकता हूँ, वही एक भावना है। किम कर रहा, आप लीला कर रहे हो तो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, कुछ भी हो लेकिन मैं सेवा करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी भी जब उन्होंने बाल बालों को चुरा लिया, बाद में उनको ध्यान में आया अरे ये तो भगवान है, तो मैंने उनकी लीला में भंग कर दिया, तो सोचते हैं कि मेरे ब्रह्मा होने का क्या अर्थ है। ब्रह्मा होने के बाद इतनी बुद्धि, इतना ऐश्वर्य, इतना निर्माण शक्ति और इतना पोजिशन प्राप्त करने के बाद भी मैं ऐसी मूर्ख गलती कर सकता हूँ, तो ब्रह्मा होना ही बेकार है। क्योंकि ब्रह्मा होने की वजह से मुझे ऐसा एक शंका आई और मैंने टेस्ट करना चाहा और कसौटी देना चाहा, तो मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। मैं अभी चाहता हूँ कि मैं इतना बड़ा पदाधिकार आपका हूँ, आपका विश्वस्त हूँ, आपका अधिकार मतलब कृपा प्राप्त हूँ, फिर भी मैं ब्रह्मा जी के पद से अहंकार से भरकर मैंने ये गुस्ताखी की कि आपके लीला में आकर बीच में मैंने बालकों को छीन कर आपको टेस्ट करने का प्रयास किया, इतना बड़ा गुनाह किया मैंने, तो बहुत पश्चाताप करते हृदय से। और केवल झूठ मूठ का पश्चाताप नहीं है भगवान को ले जाने के लिए, वो हकीकत में सोचते हैं कि ये जो पद वद जो है मेरा ना, ये बहुत गलत चीज है, इस बड़े पद की वजह से मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गई मेरी, अब मैं ये पद नहीं चाहता, मुझे नहीं ब्रह्मा बनना है, मुझे कहीं नहीं जाना है अभी, मुझे आपकी लीला में भाग लेना है, ना मुझे ब्रह्मा बनना है, ना निर्माण करना है या सृष्टि का, ना कोई किसी पे अधिकार जमाना है, ना किसी का नेतृत्व करना है, मैं इस कुछ नहीं चाहता, मैं आपकी आप लीला में सेवा करना चाहता हूँ। और हकीकत में भगवान ने उनको माफ किया, लेकिन भगवान ने माफ करने के पश्चात भी इनकी हृदय की शांति नहीं हुई, उनका पश्चाताप जो है और ज्यादा हो रहा था। तो माफी भगवान से लेकर, कृपा लेकर, आशीर्वाद लेकर सब कुछ हो गया, लीला खत्म हो गया, फिर भी ये हंस पर बैठकर अपने ब्रह्मलोक जाने लगे, दिल शांत नहीं था उनका, दोबारा पृथ्वी पर उतर गए और दोबारा उतर कर उन्होंने बहुत कड़क तपस्या की कि अगले जन्म में मुझे ब्रह्मा नहीं बनना है, मैं इस ब्रह्म पद से निवृत्त होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसा यकश्चित व्यक्ति बनूं कि उसका कोई पद ही ना हो, कोई पोजिशन ही ना हो, कोई रेस्पेक्ट ही ना हो उसका, ऐसा तुच्छ जीव बनना चाहता हूं मैं, और खास करके अगर मैं आपके लीला में अगर भाग नहीं ले सका लेकिन आपकी चीज़ भंग तो जरूर नहीं करूँगा, ऐसे मुझे बुद्धि आनी चाहिए कि मैं आपके सेवा में बाधा नहीं डालूंगा, और हो सके तो आपकी लीला में हाथ बटाऊंगा, सेवा करूंगा। तो भगवान उसके भाव से बहुत प्रसन्न हो गए कि इतना बड़ा व्यक्ति है हाँ, लेकिन कितना नम्रता को अपनाए हुआ, यहाँ पत्थर बने हुए वो, और तपस्या करते हैं ऊंचे पद से तुच्छ बनने के लिए। सोचो आप, जैसे उद्धव जी थे ना, सबसे ऊंचे पद पे थे, भगवान के एकदम निकट थे, लेकिन यहाँ पर तृण का पत्ता बनने के लिए तपस्या किया उन्होंने। तो वो तपस्या का भाव देकर उनके सामने गौरांग महाप्रभु प्रकट हो गए, और वो कहाँ तपस्या किया था उन्होंने, अंतरद्वीप में, जब तक प्रकट नहीं हुआ था विश्व के लिए। वो तो कलयुग की लीला है, ये द्वापर की लीला है। वो द्वापर में उस स्थान पर बैठकर तपस्या किया उन्होंने जहां पर कलयुग में आके चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं। तो द्वापर में ही जब तपस्या किया तो तपस्या के अंत में द्वापर में ही मायापुर नवद्वीप अंतरद्वीप के अंदर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। हाँ, कहते ना प्रीपोन्ड दर्शन, अब तक लीला प्रकट नहीं हुआ है। और महाप्रभु जी कहते हैं कि अगले युग में जब मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में राधा जी का भाव लेकर प्रकट हो जाऊंगा, तब मेरी लीला में तुम यवन कुल में जन्म लेना, और तुम्हारा नाम हरिदास ठाकुर होगा, और तुम यवन कुल में जन्म लेते हुए भी नाम के जप में, नाम के कीर्तन में, नाम के आचार्य बनोगे, और मेरी लीला में सहायता करोगे। तब जाकर ब्रह्मा जी का हृदय शांत होता है कि अभी मुझे कोई तुच्छ जन्म मिल रहा है, जो सबसे पतित जन्म है, जिसमें कोई सम्मान नहीं है, जिसमें कुछ मतलब बोलते ना कि आउटकास्ट, कोई ब्रह्मा जी का आनंद वो सम्मान वम्मान नहीं होगा उसके अंदर, तो वो खुश हो गए, चलो अभी मेरा पद भ्रष्ट हो जाऊंगा मैं, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो द्वापर की लीला हुई उसके बाद में कलयुग हुआ, उसी कलयुग में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और उस कलयुग में हरिदास ठाकुर जो है, ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बने हैं, यवन कुल में जन्म लेकर नामाचार्य बने हैं, और जब वो अंतर्धान हुए हैं तो चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल अपने छाती पर धारण करते हुए, उनके मुख कमल का दर्शन करते हुए, आंखों में आंसू बहाते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा है, और वो गौलोक धाम चले गए हैं। इसका मतलब हमारे युग में हमारे ब्रह्मा जी नहीं है अभी वहाँ पर, एक दूसरे ब्रह्मा जी आर्यमा नाम के ब्रह्मा जी हैं, वो भी कार्यभार संभाल रहे हैं, क्योंकि हमारे ब्रह्मा जी भाव विभोर होकर यवन कुल में जन्म लेकर हरिदास ठाकुर बनकर गौलोक धाम पधार चुके हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज की जय हो। सो ये सब भाव की बातें हैं, हमको भाव जो है यहाँ पकड़ना है। भाव पकड़ने में सफल हो गए तो यात्रा सफल हो गई, बरसाने में आना सफल हो गया, यात्रा करना भी सफल हो गया। जय जय श्री राधे श्याम।